हैं परम पूज्य गुरुदेव।
स्वामी के आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज के हम सभी लोग अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया पर विगत कई दिनों से निरंतर विचार कर रहे हैं। जीवन श्रद्धा से अच्छा बनता है और श्रद्धा होने के बाद हमारे भीतर आत्मविश्वास उत्पन्न होता है, हमारी दृष्टि में एक ऐसा महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है कि वो पूरे जीवन को ही परिवर्तित कर देता है। क्योंकि दृष्टि जिस तरह की हमारी हो, जैसा हमारा सोच हो, वैसे ही हमारा जीवन और आचरण बनता है। हमारा व्यवहार भी हमारे दृष्टिकोण पर ही निर्भर है। एक व्यक्ति बगीचे में जाता है और वो वहां देख रहा है कि कितने मोटे मोटे शाखाओं वाले बड़े बड़े वृक्ष हैं और वो ये कैलकुलेट कर रहा है कि अगर ये सूख जाएं तो इनकी लकड़ी कितने रुपए की बिकेगी। और वहीं पर एक व्यक्ति और ये सोच रहा है कि बस थोड़ा समय और है, इस वृक्ष में जब फल लगेंगे तो मैं उन सब फलों को उतार करके बाजार में बेचूंगा और धन पैसे कमा लूंगा। कोई और भी वही है और वो ये देख रहा है कि कितने सुंदर फूलों के वृक्ष हैं, कितनी बढ़िया हवा चल रही है, वातावरण कितना निर्मल, कितना पवित्र है, मन को शांति देने वाला है। जिसकी जैसी दृष्टि है, जिसका जैसा सोच है, वैसा ही वो इस संसार में एक ही वस्तु को अपने अपने सोच और दृष्टिकोण के अनुसार देख करके अपना जीवन व्यतीत करता है। हमारे साथ भी यही है। दृष्टि बदलने के बाद हमें कुछ अलग से करना नहीं पड़ता है। हम स्वयं अपने जीवन में देखते हैं कि जैसे ही दृष्टि बदलती है, हमारा पूरा का पूरा जो लाइफ स्टाइल है, हमारा सुबह से शाम तक का जो जीने का ढंग है, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। चेंज का मतलब क्या? क्या हमने भोजन करना छोड़ दिया, या हमने दुकान जाना छोड़ दिया, या हम रात में अब सोते नहीं हैं? क्या चेंज क्या हुआ? नहीं, ये सब एज इट इज, जैसा था वैसा ही चलता रहता है। लेकिन जो मेरे अंदर की भावनाएं थी इन सबको करने के पीछे, जो मेरे कर्तापने का भाव था, जो इन सारी चीजों को का अपने आप को स्वामी मानने का भाव था, इन सब का मैं भोगता हूं, यह जो मेरे अंदर एक भाव था, वो भाव शेष नहीं रह जाता। मैं तो सिर्फ अपने कर्मों का फल भोग रहा हूं और सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, किसी के पुण्य के उदय में मैं उसमें सहयोगी बनता हूं और उसका श्रेय मैं ले लेता हूं, या कि मैं किसी के पाप में और सहयोगी बनकर संक्लेशित हो लेता हूं, मैं इस तरह संसार ही बढ़ाता हूं, ऐसा विचार आ जाता है, तब फिर कर्ता भोक्ता और स्वामीपने का भाव हट करके मात्र कर्तव्य कर रहा हूं ऐसा विचार करके और सारा जो कुछ पहले किया जा रहा था वह ज्यों का त्यों यथावत चलता रहता है, पर भीतर की भाव दशा बदल जाती है, इतना ही अंतर आता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने पूरी गीतांजलि लिखी, उन्हें विदेश में और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होने के बाद नोबेल प्राइज भी मिला। उनके पड़ोसी ने एक दिन जब वो उनसे मिला तो कहा कि सुना है कि आपने कोई भगवान की स्तुति में कोई गीतांजलि नाम का काव्य लिखा हुआ है। उन्होंने कहा लिखा तो है। तो उसने बहुत बहुत सहज रूप से और बहुत स्पष्ट रूप से उनसे ये पूछ लिया कि भगवान के इतने गीत आपने लिखे हैं, क्या कभी भगवान का दर्शन किया है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने जीवन के संस्मरण में लिखा कि मैं उन क्षणों में बहुत व्यथित और बहुत चकित हो गया कि सचमुच मैंने गीत तो गाए भगवान के, लेकिन मुझे उस भगवत्ता का साक्षात्कार तो हुआ ही नहीं। और फिर वे उस अपने पड़ोसी से नजर बचा के निकलने लगे। कई कई दिन तक तो घर से बाहर नहीं निकलते थे क्योंकि वो पड़ोसी ना मिल जाए और उसका सामना नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसने इतनी बड़ी बात कह दी है कि कभी इतने भगवान के गीत लिखे हैं, गाए हैं, कभी भगवान को देखा भी है, उनका दर्शन किया है, कभी साक्षात्कार हुआ उनसे, वो तो कभी नहीं हुआ। एक दिन रात जल्दी नींद खुल गई, सुबह सुबह अभी सूरज उगने में देर थी, वो टहलने के लिए निकल गए। लिखते हैं कि मैं वो टहलते टहलते और रास्ते के किनारे जा रहा था। वहां वेस्ट बंगाल में तो हर आदमी के घर के सामने एक छोटा सा पोखर होता है जिसमें कि वो मछलियां पालते हैं और भी साग सब्जी उगाते हैं जो भी। तो एक पोखर के समीप जाकर के थोड़ा ठहरे तो देखा कि उस पोखर के गंदे पानी में भी, और चांदनी रात थी तो वो चंद्रमा उसके भीतर बहुत उज्जवल और पड़ा हुआ था, ऐसा दिख रहा था कि जैसे चंद्रमा उसमें पड़ा हुआ है, उसका प्रतिबिंब। वह देखते देखते और अत्यंत मन हर्षित हो गया, गदगद हो गए और फिर पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं, भागे भागे आए। सुबह होने में देर थी फिर भी उस पड़ोसी के दरवाजे खटखटा के उसे जगा करके और लिपट गए, उसके गले से लग गए और कहा कि मैंने आज दर्शन कर लिया। तुम जो मेरे से कह रहे थे कि इतने गीत भगवान के गाए हैं, कभी दर्शन किया है? आज मैं कह सकता हूं कि मैंने दर्शन कर लिया। उसने कहा हुआ क्या? उन्होंने कहा कि मुझे आज ये अनुभूति हुई कि जैसे उस गंदे पोखर के पानी में भी चंद्रमा अत्यंत निर्मल और उज्जवल रह सकता है, ऐसे ही वो परम विशुद्ध मेरी अपनी आत्मा इस मलिन देह और कषायान्वित भावों के साथ भी उतनी ही निर्मल और उज्जवल है। मुझे आज उसका साक्षात्कार। देखिएगा, वो जो श्रद्धा है, वो जो दृष्टि की निर्मलता है, वो कराती हमें अपने भीतर की उस आत्मशक्ति का अनुभव, उसकी प्रतीति, उसका स्पर्श, उसका उसमें रुचि। क्या ऐसी श्रद्धा हमारे भीतर हम उत्पन्न नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, हम वही प्रयत्न कर रहे हैं कि ऐसी ही श्रद्धा, ऐसा ही हमें दृष्टि की जो निर्मलता है वो हमें प्राप्त हो, ताकि हम जान सकें, अपने जीवन की सही पहचान कर सकें और फिर अपना जीवन जिए, तो कुछ और की हमारा जीवन होगा। जिस ऊंचाई को हम पाना चाहते हैं उस ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे। हमारे साथ अभी तक जो घटित हुआ है उस पर थोड़ा सा विचार कर ले, ताकि हम उन चीजों से बच करके और अपनी दृष्टि को निर्मल कर सकें। पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल, ताको न जान विपरीत मान, करी करें देह में निज पहचान। मैंने आज तक एक बहुत बड़ी भूल, पहली भूल है, यही की है, यहीं से मेरे जीवन में संसार भ्रमण की शुरुआत हुई होगी। शुरुआत अनादिकाल से यही मेरी भूल पड़ी हुई है। शुरुआत से मतलब अनादिकाल से मैं यही एक पहली भूल करके आता हूं कि मेरा अपना जो चैतन्य स्वरूप है मैं उससे उसे भूल करके और देह में ही आत्मा की प्रतीति करता आया हूं और इस देह के सुख में ही मैंने मानो वास्तविक सुख पा लिया है ऐसा मैं मानता आया हूं। इस देह को ही मैं आज तक चेतना मानता है। हालांकि ऐसा कोई कहता नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आप अपने शरीर को आत्मा मानते हैं आप फौरन कहेंगे कि नहीं मानते। लेकिन शरीर की जितनी सेवा टहल करते हैं और चेतना की खबर तक नहीं लेते दिन भर में उससे तो यही लगता है, उससे तो यही मालूम पड़ता है कि आप कह नहीं रहे हो लेकिन आप मान तो यही रहे हो कि जितना इसको संभालूंगा सजाऊंगा नहलाऊंगा धुलाऊंगा उतना मैं बड़ा हो जाऊंगा। तो इसका मायना है कि मैंने इसको ही चेतना और आत्मा मान लिया है तब ना मैं इसकी सेवा टहल कर रहा हूं। ये अभी कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर नहीं है इसके मायने। हाँ ये विचार तो करना पड़ेगा। मैं अपने को इससे अलग मानता हूं या मैं ही देह हूं ऐसा तो नहीं मान रहा हूं। ये भूल मेरी अपने आप मुझे दिखने लगेगी, ये भूल मेरे भीतर से निकलने लगेगी। फिर मैं जैसे ये सोच मेरे भीतर आता है जैसे ये दृष्टि मुझे मिलती है कह रहे क्या कर रहा हूं मैं ये अलग हूं और ये बिल्कुल अलग है मेरा अपना स्वभाव ज्ञान दर्शन है ये तो जड़ है पौद्गलिक है परिणमन इसका मैं इसके पीछे अपना समय व्यर्थ कर रहा हूं ऐसा अपने आप लगने लगेगा। किसी के कहने से नहीं मैं कह रहा हूं इसलिए आपको ऐसा लगने लगे ये नहीं ये आपको अपने भीतर से लगने लगे जिस दिन तो समझना कि हाँ अब थोड़ा कुछ हमारे अंदर दृष्टि की निर्मलता आ रही है ऐसा अपने आप लगेगा। आप स्वयं इस चीज को रियलाइज करेंगे कि हाँ सचमुच अभी तक तो मैं इसी भ्रम में था ये मेरा भ्रम धीरे धीरे टूट रहा है। अगर श्रद्धा हमारी बढ़ती चली जाएगी सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति हम निरंतर तत्व का अभ्यास करेंगे सौ पर का हमें अगर जरा सा उनके बीच की भेद रेखा का एहसास होगा तो ऐसा ही हमें लगने लगेगा। और फिर जिस व्यक्ति को ये चीज मालूम पड़ जाए कि ये मैं नहीं हूं ये मेरे से भिन्न है तब फिर क्या स्थिति बनती है। एक व्यक्ति धोबी के यहां से अपने कपड़े धुलवा के वहीं से पहन करके आ रहा था घर और वो धोखे से दूसरे की शर्ट पहन के आ गया था। और जब वो व्यक्ति धोबी के यहां पहुंचा तो उसने कहा कि अरे तुम्हारी वाली शर्ट तो अब भी वो उनको मैंने दे दी और एक जैसी लग रही थी तो तुम्हारी उनके पास चली गई और उनकी तो यहीं रखी रह गई तुम जाओ जल्दी से। और वो जा रहे हैं वहां सामने ही तो जा रहे हैं उनसे कहना कि वो आप हमारी शर्ट बदल के पहना है देखना। वो व्यक्ति भागा चला जाता है और ये जनाब कैसे चले जा रहे थे उतने 100-200 कदम ऐसे चले जा रहे थे ऐसी भीतर भावना थी कि कितनी सुंदर मेरी शर्ट है और चार लोग देख रहे होंगे और देखें जरूर देखें कि ये मैं कितने सुंदर कपड़े पहने हूं मैं कितना सुंदर लग रहा हूं ये भाव था उस समय। और जैसे ही वो व्यक्ति पहुंचा धीरे से कंधे पर हाथ रख के कहा कि जनाब थोड़ी गलती हो गई धोबी की आप निशान देख लें अपनी शर्ट का ये बदल गई है आपकी वाली मेरे पास आ गई मेरी वाली आप पे चली गई है। और इनने भी जरा सा जब कंफर्म किया तो इनको भी विश्वास हो गया कि ये तो दूसरे की शर्ट पहन ली मैंने भूल चूक अब यहीं तो उतार के दे नहीं सकते घर तक तो जाना पड़ेगा लेकिन अब ऐसे जा रहे हैं कि कोई देख ना ले कि ये दूसरे की शर्ट पहने। अभी तो ये मन में भाव था वो जो 100 कदम चले थे तो ऐसे चल रहे थे कि कोई देख तो ले कि मेरी शर्ट कितनी सुंदर है और अब वही भाव शर्ट ज्यों की त्यों पहने हुए भी कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ लेकिन भीतर के भावों में परिवर्तन हो गया ये मेरी नहीं है। पर दब मिनम तिजानी दुम जयदि तह सब्बे पर भावे नादून विमुंच दी नानी। हमारे अंदर ऐसा अनुभव ऐसी प्रतीति होने लगेगी ऐसा बोध हमारे भीतर जागृत हो जाएगा जैसे कि कोई पर वस्तु को पर जान करके उसके साथ व्यवहार करता है, ऐसे ही मैं शरीर को, इस देह को भी पर जान करके जिस दिन उसके साथ पर की तरह व्यवहार करने लगूंगा, उस दिन मालूम पड़ेगा कि हां सचमुच मेरी चेतना अब निर्मल होना शुरू हो गई। मैं सुखी दुखी नहीं, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नष्ट आपको नाशवान। एक और मेरी भूल हो जाती है, अभी तो मैं इस शरीर के सुख दुख को ही अपना मान लेता हूं, उससे भी एक कदम आगे बढ़ जाता हूं मैं, इसके उत्पन्न और नष्ट होने पर भी मैं अपने ही उत्पन्न और नष्ट होने का भ्रम पाले हुए हूं। तभी तो जब मरण का समय आता है या कोई मरण की बात कहता है तो मैं कहता हूं ये बात मत कहो। हां अगर कोई ये कहे कि हमारी तो थोड़ी सी, हमारे मुंह से अगर निकल जाता कई बार कि भैया अब तो हमारी ज्यादा नहीं है, 10-12 साल की और रह गई, अरे महाराज जी ऐसी बात नहीं करवा, अरे वाह, ऐसा लगता जैसे कि हम ऐसा कह के और अपनी बड़ी सहानुभूति और बड़ी संवेदनशीलता व्यक्त कर रहे हैं। नहीं, ये भ्रम है। हमें उन क्षणों में यह लगता है कि जैसे इस देह नहीं मरेगी, मैं ही मर जाऊंगा। मरती है देह, मैं फिर भी रहा आता, लेकिन क्या करूं, मैंने इतना अधिक इस देह के साथ अपना जीवन व्यतीत किया है कि इसके जन्म और मरण में मुझे अपने जन्म और मरण का भ्रम हो जाता है। तब मैं इसको संभालता हूं, मरण के समय अपनी चेतना को नहीं संभालता। जबकि किसी के भी मरण पर क्या कहा जाता, देहावसान, आत्मावसान तो नहीं कहते, कहते क्या, नहीं देहावसान, स्पष्ट ही है कि देह का ही मरण हुआ है, मैं फिर भी यथावत हूं। ये मैं अपने भ्रम को तोड़ दूं तो जीने का ढंग बदल जाएगा, क्योंकि अभी तो मैं ऐसे जीता हूं कि मर ना जाऊं। हां फिर तो मुझे अपने उस शाश्वत स्वरूप पर विश्वास हो जाएगा और इसके मरने में मुझे कहीं कोई मुश्किल नहीं मालूम पड़ेगी। मैं तो जैसे ही ये देह छूटने को होगी, मैं सहज भाव से जैसे पुराने कपड़े उतार करके नए धारण करते समय मैं हर्षित होकर के पुराने कपड़े छोड़ देता हूं, ऐसा ही इसको छोड़ने लगूंगा। ये मेरे भ्रम को टूट जाने पर मेरे जीवन में परिवर्तन आए बिना नहीं रहेगा। अभी टूटा नहीं है भ्रम, अभी तो बाजे बजवाना पड़ते हैं जब जन्म होता है, मरण होता है तब गमगीनी छा जाती है। नहीं, ये सब मेरा जो व्यवहार है वो पर को स्वमानने की वजह से हो रहा है। अब मैं जरा सा विचार करूं, पर को पर मानूं, वो मेरा स्व क्या है इसको पहचान गया हूं, तो मेरे व्यवहार में ये परिवर्तन आना ही चाहिए। रागादि प्रकट ये दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। एक और मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है, मैं अपनी कमजोरियों पर विचार कर रहा हूं। जब दृष्टि निर्बल होने को होती है तब अपनी कमजोरियों पर विचार करने का मन होता है, और जब तक दृष्टि में भ्रम है तब तक दूसरे की कमजोरियों पर विचार करने का मन होता है, इतना ही तो है ही। अब अपनी कमजोरियों में से एक कमजोरी और समझ में आती है कि रागादि प्रकट ये दुख देन, ये राग देश में जो सुबह से शाम तक अपने पराये का गोरख धंधा करता रहता हूं, खेल खेलता रहता हूं, ये अपना, ये पराया, ये दूसरा, ये मेरा, ये जो मेरे तेरे का भाव मेरे अंदर निरंतर चलता रहता है और उसके से प्रेरित होकर के मैं राग द्वेष बढ़ाता रहता हूं, वो मेरे दुख का कारण है, ये मैं स्पष्ट जानता हूं, फिर भी उसी में मैं बड़ी शांति महसूस करता हूं। अब मैं इस भ्रम को तोड़ दूंगा, मुझे अब राग द्वेष का प्रपंच ठीक नहीं लगता। ऐसी छटपटाहट घर गृहस्थी के बीच भी हो सकती है कि फिर घर गृहस्थी का प्रपंच यह राग द्वेष कम करना पड़े, कौन पड़े इस झगड़े में, ऐसा लगने लगे, जबकि रहना वही है, अभी कोई छोड़ना नहीं एकदम, नहीं तो आप हमारे कहने से एकदम छोड़ दो, फिर बाकी सब लोगों का, इतना लोगों का इंतजाम कहां से होएगा फिर। हां नहीं, जल्दी बहुत जल्दी नहीं करना, सिर्फ ये मन में विचार आ जावे कि ये रागादि जिनको कि मैं कल तक अच्छा मानता था ये अच्छे नहीं है, ये मुझे दुख देने वाले हैं, इनमें मुझे ज्यादा इंडल्ज नहीं होना चाहिए, ज्यादा इसमें आशक्त नहीं होना चाहिए, ये सब मुझे करना पड़ते हैं, मेरा स्वभाव नहीं है, ये तो मेरी वैभाविक परिणति है, और वैभाविक परिणति को मैं स्वभाव मानने का भ्रम ना पाल लूं, मैं इनको ही ठीक ना मान लूं, मैं इनसे बचने के लिए निरंतर पुरुषार्थ करूं, जहां राग द्वेष बढ़ने लगे वहां से हट जाऊं कि अरे ये तो मेरा संसार बढ़ाने वाली बात है, अब ये मुझे पसंद नहीं है। ऐसा भाव अपने आप अपने भीतर आना शुरू होगा दृष्टि की निर्मलता से। और देखते हैं अपन, अगर ऐसा भाव आने लगता है तो अपनी पीठ थपथपाएं कि हाँ, अब थोड़ा सा हमने अपने जीवन को ऊंचे उठाने की प्रक्रिया शुरू करी है। शुभ अशुभ बंद के फल मझार, रति अरति करें निज पर विशाल। एक और मेरी कमी है, अभी तो जब मेरे पुण्य कर्म का उदय आता है और मुझे सारी सुख सुविधाएं सहज रूप से मिलने लगती हैं तो मैं फूला नहीं समाता हूं। मेरे मन का काम हो जाता है तो मेरे पैर जमीन पर नहीं पड़ते हैं। अरे ये मेरा भ्रम है, ये मैंने थोड़ी किया है, ये तो पूर्व संचित पुण्य के उदय से मुझे ऐसी सुविधाएं मिल गई हैं, मैं व्यर्थ ही इनमें इतना अधिक गाफिल हो रहा हूं और अपने स्वरूप से विमुख हो रहा हूं। और इतना ही नहीं, जब मेरे ऊपर किसी पाप कर्म के उदय में कोई विपत्ति आ जाती है तो मैं यहां भागता हूं, वहां माथा टेकता हूं, इससे याचना करता हूं कि बचा लो, मैं तो अब बहुत विपत्ति में हूं, किसके पास जाना है, कहीं नहीं जाना। मेरी वीतरागता पर कभी संकट नहीं आता, ये तो सिर्फ मेरे राग द्वेष पर संकट आता है। जितना संकट है वो सब राग द्वेष का है, वीतरागता में कहीं कोई संकट की बात ही नहीं। ऐसा मन के भीतर भाव आवे तो शरण किसकी लेऊंगा, मैं वीतरागता की शरण लेऊंगा और तब फिर मैं इस बंद की प्रक्रिया से भी ऊपर उठ सकता हूं। शुभ अशुभ दोनों अपना फल देंगे, सुख और दुख के रूप में मैं हर्ष विषाद ना करूं या कि उसे घटाने का प्रयत्न करूं। कम से कम दिन भर में हर्ष विषाद हो, वीतरागता मेरे अंदर बनी रहे, सद्भाव बना रहे प्राणी मात्र के प्रति। सद्भाव के बाद ही वीतरागता आएगी। राग द्वेष को घटाने का आसान सा उपाय है कि सबके प्रति समान भाव रखो, सद्भाव रखो, फिर उसके बाद जो है उससे भी ऊपर उठ जाएंगे तो वीतरागता का अनुभव होगा। लेकिन राग द्वेष जो कि कर्म के उदय में है, जो हर्ष विषाद मुझे कराते हैं, वो सब मेरे लिए ठीक नहीं है, ऐसा मैं विचार करूं और जब मेरे पुण्य और पाप अपना फल दें मुझे तो मैं उसमें समता भाव रख सकूं, संतोष पूर्वक उन सबको झेल सकूं। सुख को भी भैया संतोष पूर्वक झेलना सबसे कठिन है। दुख को तो आदमी एक बार संतोष पूर्वक झेल भी लेवे, सुख नहीं झेल पाता, सुख नहीं झेला जाता आदमी से। इससे उससे कहने का मन होता कि देख लो कितने सुखी हैं हम, हाँ इतना एक्साइटेड हो जाते हैं हम, इतना अहंकार करने लगते हैं कि मेरा तो सब ठीक चल रहा है, मुझसे ज्यादा यहां पर पुण्यात्मा कोई नहीं है, ये मेरा भ्रम है, ये मेरी कमजोरी है, मैं इस कमजोरी को अब समझने लगा हूं, इस कमजोरी को निकालने के लिए मैं प्रयत्न करूंगा, ऐसा मन में भाव उत्पन्न होना चाहिए। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, तिलख है आपको कष्टदान। और एक और मेरी कमजोरी है, जब जब भी मेरे कल्याण की बात चलती है, जब जब भी त्याग तपस्या और व्रत नियम की बात चलती है, मैं बहाने बनाता हूं, मैं कहता हूं मेरे से नहीं होता। वो जो जब मैं दुकान पर बैठता हूं और एक चॉकलेट की शीशी ऊपर रखी है, उसमें से एक चॉकलेट बच्चे को देने के लिए तीन दफे उठता बैठता हूं, लेकिन सामायिक के समय जो है कहता हूं गोड़े में दर्द हो रहा, ये बहानेबाजी है मेरी, मैं समझ गया हूं, अब मेरी ये कमजोरी मैं समझ गया हूं। जिस में मेरा कल्याण है आत्मा का, वो सब मुझे कष्टकारी मालूम पड़ते हैं, अरे ये भ्रम मुझे तोड़ना पड़ेगा। नहीं, जिसमें मेरे आत्मा का कल्याण है उसमें मैं कष्ट महसूस नहीं करूंगा, नहीं तो मैं तो फिर अपना आत्मा का कल्याण कभी कर ही नहीं पाऊंगा। बेईमानी करना मुझे बहुत आसान मालूम पड़ता है, ईमानदारी में तो कठिनाई है ही। मैं लोगों से कहता हूं कि अरे ऐसे न चलेगा, ईमानदारी से बड़ी मुश्किल में पड़ोगे तुम। नहीं, अब ऐसा ना कहूंगा, अब तो ये कहूंगा कि बहुत आसान है, ईमानदारी का जीवन जियो, संतोष पूर्वक जीवन जियो। बहुत व्यवहारिक जीवन में परिवर्तन आएंगे, आत्मिक रूप से निश्चयात्मक रूप से तो परिवर्तन आएंगे ही, बहुत व्यवहारिक परिवर्तन भी देखने में आने लगेंगे अगर हमारे मन से ये भ्रम हट जाएंगे, हम अपनी भूल को जरा ठीक कर लेवे। रोके न चाह निज शक्ति खोवे। और निरंतर मैं सुबह से अपनी जीवन यात्रा शुरू करता हूं, जाने कितनी आकांक्षाओं से लदा हुआ मैं सुबह से शाम तक जीवन जीता हूं। रात विश्राम करने से पहले भी देह विश्राम करती है, मेरे मन की इच्छाएं कभी विश्राम नहीं कर पाती हैं, निरंतर चलती रहती हैं। मैं अपनी पूरी एनर्जी पूरी ऊर्जा उसी इच्छाओं की पूर्ति में लगा देता हूं। रोके न चाह, मैं कभी इन इच्छाओं को रोक नहीं पाया और अपनी शक्ति को मैंने व्यर्थ ही अपव्यय किया है, अब मैं इस भूल को भी दूर करूंगा, अब इस कमजोरी को भी निकाल दूंगा, मैं अब अपनी इच्छाओं को सीमित करके अपने चेतना अपने आत्मा के कल्याण के लिए भी थोड़ा सा समय निकालूंगा, वरना तो 24 घंटे और 365 दिन मेरे पास मेरी इच्छाओं की पूर्ति में भी कम है। कभी नहीं हुई किसी की भी इच्छा पूरी हो जावे तो फिर वो इच्छा क्या, इच्छा की तासीर ये है कि वो कभी पूरी नहीं होती, होती जान पड़ती है लेकिन उसके साथ अपनी एक दूसरी संतान दूसरी इच्छा को छोड़ करके जाती है, वो पूरी नहीं होती, उसकी संतति बनी रहती। ऐसा जान करके मैं अब अपनी इच्छाओं को रोकूंगा। शिव रूप निराकुलता न जो, दिन भर में निराकुलता का पाठ तो पढ़ता हूं लेकिन निराकुलता मेरे जीवन में आ नहीं पाती है, क्या करूं, आकुलता के काम करता हूं इसलिए निराकुलता कैसे आएगी, अब मैं आकुलता के काम नहीं करूंगा, ताकि निराकुलता मुझे कहीं से लानी नहीं है, वो तो मेरी अपनी स्वाभाविक परिणति है, ये तो मेरी भूल है कि मैं आकुलता को ही ठीक मान करके उसी में लगा रहता हूं, अगर आकुलता छोड़ दूं तो निराकुलता तो मेरा अपना स्वभाव है, मुझे वो अपने आप ही प्राप्त हो जाने वाली चीज। ऐसा मन में मेरे अगर विचार आने लगे फिर देखिएगा कि क्या जीवन जीने का हमारा ढंग होता है। अभी तो भैया देरी है, अपन को लगेगा समय लगेगा, कोई हर्जा नहीं, लेकिन लग जावे समय कितना भी, पर मुझे ये चीज अपनी प्राप्त करनी और अपनी ये भूलें मुझे हटा देनी है, मेरे अंदर ये आत्मविश्वास अगर जाग जावे, ये श्रद्धा अगर मेरे भीतर जाग जावे, तो मैं इन भूलों को अलग करके अपने उस स्वरूप को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकता हूं। एक शिष्य था अपने गुरु का, प्यारा शिष्य था उनका, इतना विश्वास था कि गुरु का नाम लेकर के वो बड़े से बड़े काम आसानी से कर लेता था, लोग चकित रह जाते थे, लोग उसको विपत्ति में डालना चाहते थे और वो गुरु का नाम लेकर के ऐसे विपत्ति से निकल जाता था कि लोग चकित रह जाते थे। सारे शिष्यों के बीच में सबकी आंख उसी पर लगी रहती थी, सब इस फिराक में रहते थे कि कैसे इसको नीचा दिखाएं। ये होता है, सहज है, ये तो कोई भी हो, मोक्ष मार्ग में हो और चाहे संसार मार्ग में हो, भैया भीतर की जब तक खोट न निकले जब तक तो कहूं रह आओ, सब एक ऐसो है। हाँ नहीं, अब सीधी सीधी सी बात, उसमें कोई लाग लपेट की बात ही नहीं है, जब तक भीतर की घुंडी नहीं खुली तुम चाहे कछू कर लो। अब सबके मन में ये बड़ी ईर्ष्या कि जी क्यों इतना ज्यादा श्रद्धालु है और गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा इसकी है, इसको किसी ना किसी मुश्किल में डालो। तो एक दिन जो है आश्रम में आग लग गई, अब लग गई कहना पड़ती है, कई बार लगाने के बाद भी लग गई कहना पड़ती, हाँ अपने ही लगाऊ तो कहते लग गई, अपने भीतर तो अपने ही लगाऊ, बाहर तो थोड़ी लगा, बाहर तो दूसरों लगा देंगे तो अभी ठीक। अब आग लग गई और सब थोड़ा मोड़ा यहां वहां सामान कर रहे हैं और वो शिष्य जो है बैठा हुआ चुपचाप, उससे सब लोग कहते कि देखो गुरुजी के कमरे तक आग पहुंच गई है, वहां गुरुजी की जो कीमती कीमती चीजें रखी हैं उनको कौन बचाएगा, तुम तो बड़े भक्त हो गुरुजी के, बचा लाओ। जब सबने ऐसा कहा तो उसने कहा कि ठीक है, गुरुजी का नाम स्मरण किया, उनके प्रति अपार श्रद्धा उसके मन में, आग लगी रहे तो लगी रहे, वो तो सीधे निश्चिंत तो निष्फिकर होकर निशंक होकर के भीतर प्रवेश करके गुरुजी की जो भी शास्त्र थी किताबें थी और भी माँ चीजें थी वो सब उठा करके बाहर ले आया, कहीं उसके कपड़े नहीं जले, कहीं कोई चीज हाथ तक नहीं जला, कुछ भी नहीं हुआ। लोग बड़े दंग रह गए कि भाई इतनी आग के बीच में से जा करके निकल, अब वो तो सोच रहे थे कि एको काम हो जावे मगर कचू नहीं बो, तो और दिक्कत हुई उनको कि अब और कुछ करना चाहिए। अब एक बार जो है वो पहाड़ पर सब लोग घूमने गए तो वहां पर, और जैसे अपन नहीं कहते कि चढ़ा दो ताव पे चढ़ा दो, तो चढ़ा दिया कि तुम तो बहुत गुरुजी के भक्त हो, हम जब जाने तुम्हारी भक्ति, जब तुम इतने ऊंचे पहाड़ से नीचे कूद के बताओ, अब बताओ। ऐसे ऐसे अपन लोग जो है श्रद्धा की ऐसी परख करते कई बार। तो उस शिष्य ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है, मेरे गुरुजी तक बात पहुंच गई है ये बात कि मुझे गुरुजी पर श्रद्धा है, तो है ही वो, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं। उसने नाम लिया, कूद गया वो नीचे, नीचे कूदा तो ऐसे जैसे कि किसी ने नीचे उतार करके नीचे खड़ा कर दिया हो। सबने झांक करके देखा तो वो ज्यों का त्यों खड़ा हुआ था। अब तो लोगों को जरा मुश्किल हुई। देखो दूसरे के बच जाए से मुश्किल है, बताओ है? मैंने उस पर विपत्ति आ जाती तो अच्छो है, तो और विपत्ति नहीं आई तो कहती है अरे ये तो बहुत मुश्किल का। सब में खबर फैल गई कि बहुत चमत्कारी है वो शिष्य, बड़ी श्रद्धा है उसकी गुरु पर। गुरु तक ये खबर पहुंची, गुरु जी बहुत दूर कहीं थे उन तक पहुंची। तो गुरु जी को भी एक बार सहसा विश्वास नहीं हुआ कि मेरा ही शिष्य और इतनी इतनी चीजें कर ली, आग में चला गया, जला नहीं, पहाड़ से नीचे कूद गया और फिर भी ज्यों का त्यों कुछ नहीं हुआ इसका। गुरु जी आए, शिष्य के सिर पे हाथ फेरा और कहा कि क्या ये जो मैं सुन रहा हूं वो सब सही है? शिष्य ने कहा कि इसमें तो मेरा कुछ नहीं है, आपकी ही कृपा है, आपका नाम लेता हूं और ये सारी चीजें और सहज आसान हो जाती हैं। अब गुरु जी को कैसे विश्वास हो? तो गुरु जी ने कहा कि मेरे सामने तुम ऐसी कोई चीज करके बताओ, सामने नदी है उस पर चल के बताओ। अब गुरु जी खड़े हैं और उसने कहा ठीक है चल के बता देते हैं उसमें क्या। उसने गुरु जी का नाम लिया और चल गया वो नदी के ऊपर। वापस लौट के आया और अपने श्रद्धान में वो सफल था। गुरु जी के पैर छू के कहा कि गुरु जी क्षमा करना मुझे, मैं तो आपसे बहुत छोटा हूं पर एक बात आपसे कहनी है। क्या? मैं आपकी परीक्षा में तो पास हो गया हूं पर बहुत साहस करके आपसे एक बात कहना चाहता हूं। कहो। मुझे तो आपके ऊपर विश्वास है लेकिन आपको खुद अपने ऊपर विश्वास नहीं है, हैं? तब तो आप मेरे से कह रहे हैं कि मुझे करके बताओ और सारी दुनिया कहे तो मैं एक बार मान लूं, लेकिन आपने ही ये कहा तो मुझे तो ये लग रहा है कि शायद आपको ही अपने ऊपर विश्वास नहीं है। भैया मैं तो ये इसलिए कह रहा हूं कि सारी